नमस्कार, गुड इवनिंग। शुभ संध्या घड़ी में रात के 8:30 बजते ही हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार। संजीव, स्वागत आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से भी सभी सुनने वालों को नमस्कार।
संजीव, भारत में मानसून की बारिश हो रही है और उधर चाइना में अगर कहें तो भारतीय हॉकी टीम गोल की बरसात कर रही है। अगर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो पहले मुकाबले में चाइना को 3-0 हराया, फिर जापान को 5-1 से हराया और आज 8-1 से मलेशिया के खिलाफ जीत।
इसके दो संदेश मैं देख रहा हूं इससे निकल रहा है। अभी एशिया में शायद भारत को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। दूसरा ये कि देखिए बहुत सारे नए प्लेयर हैं और वो धनाधन गोल कर रहे हैं। तीसरा ये कि फील्ड गोल कर रहे हैं। और आखिरी बात जोड़ूंगा कि स्विजेत बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और लेजेंड हैं, उनकी भरपाई करना मुश्किल है, लेकिन देखिए तो सिर्फ दो गोल हुए हैं तो हमारा डिफेंस भी अच्छा कर रहा है और नए जो कृष्ण बहादुर हमारे गोलकीपर आए हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो कुल मिला के शुभ संकेत है भारतीय हॉकी के लिए।
हम आपके साथ इस खबर पर ढेर सारी बात करेंगे और तमाम खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने मलेशिया पर जीत हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। दलीप ट्रॉफी क्रिकेट के दूसरे दौर के मुकाबले कल से खेले जाएंगे। सुब्रतो को फुटबॉल के अंडर 17 बालक वर्ग का खिताब मणिपुर की टीम ने जीता और विश्व कप फुटबॉल के क्वालिफायर मुकाबले में ब्राजील और अर्जेंटीना की टीमें पराजित। तो शुरुआत हॉकी से। भारत एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। चीन के हुलुनबुइर में आज मौजूदा चैंपियन भारत ने मलेशिया को 8-1 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। सुनते हैं शशांक से यह रिपोर्ट।
मैच के शुरुआती कुछ मिनटों के अंदर ही वर्तमान चैंपियन भारतीय टीम ने यह तय कर दिया कि वो शान के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाने जा रही है। पहले मिनट से ही आक्रामक हॉकी का प्रदर्शन करने वाली इस युवा टीम के राजकुमार पॉल ने तीसरे मिनट में ही गोल कर भारतीय टीम को बढ़त दिला दी। इस गोल से मलेशियाई टीम संभल भी नहीं पाई थी कि 6वें मिनट में अरायजीत सिंह ने गोलकीपर को छकाया और बढ़त को दोगुना कर दिया। जुगराज सिंह के एक मिनट बाद ही एक और गोल ने विरोधी खेमे में हड़कंप मचा दिया। इसके बाद पिछले साल की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की उपविजेता मलेशियाई टीम जैसे बिखर गई। विरोधी के टूटे हुए हौसलों पर टीम इंडिया के धुरंधरों ने जोरदार प्रहार जारी रखा। 22वें मिनट में हरमनप्रीत के गोल से भारत 4-0 से आगे हो गया। राजकुमार ने 25वें और 33वें मिनट में गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी की। इसके अलावा अरायजीत ने 39वें मिनट में जबकि उत्तम सिंह ने 40वें मिनट में गोल किया। मलेशिया पर भारत की 24 मैचों में ये 17वीं जीत है। मलेशिया ने सिर्फ 3 मैच भारत से जीते हैं जबकि 4 मैच ड्रॉ रहे हैं। इस मुकाबले की खास बात ये रही कि भारत ने 8 में से 6 फील्ड गोल किए। टूर्नामेंट में ज्यादातर युवा खिलाड़ियों के साथ उतरी भारतीय टीम ने चीन और जापान को आसानी से हराने के बाद जीत की हैट्रिक लगाकर दिखा दिया है कि भले ही ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम के कुछ सदस्य इस टीम में नहीं हैं, लेकिन जीतने की वही जिद टीम में है और फिलहाल एशिया में तो भारतीय टीम को रोक पाना मुश्किल है। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
बिल्कुल, जैसा शशांक की रिपोर्ट में हमने सुना कि जो किंतु परंतु था ओलंपिक में कि भारतीय टीम जो है वो फील्ड गोल नहीं कर पा रही, पेनल्टी कॉर्नर से ज्यादा गोल हो रहे हैं। इस टूर्नामेंट में तो भारत ने एक के बाद इतने गोल किए हैं कि गोलों की झड़ी लग गई है।
नंबर बता दूं 14
जी,
3 मैच में 14, 5 का एवरेज। ऐसा लग रहा है कि जैसे हॉकी नहीं कोई और खेल हो रहा हो। 14 गोल 3 मैच में। और जैसा रिपोर्ट में भी, अब इससे पहले भी जो हमने एक कमेंट किया वही मैं कह रहा था कि फील्ड गोल, कह कि भाई अगर आपने पेनल्टी कॉर्नर से तो गोल कर दिए, हरमनप्रीत तो आपके दुनिया में बेस्ट हैं, वो आते हैं और गोल कर देते हैं, आप जीत जाते हैं, फील्ड गोल क्यों नहीं। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल 100% वही बात है कि कोई लेकिन किंतु परंतु वाली अब बात नहीं है। फील्ड गोल भी हो रहे हैं, युवा टीम परफॉर्म कर रही है और ऐसा लग रहा है कि जो बेंच पर बैठे खिलाड़ी हैं उनमें भी वही जज्बा है। मौका मिला है दोनों हाथों से लपको, क्योंकि अगला जो 4 साल बाद एलए में होना है तो अभी तो कुछ प्लेयर वहां नहीं गए हैं जो कि पेरिस में थे भारतीय टीम में, वहां तक पहुंचते पहुंचते शायद कुछ और प्लेयर ना हो। अभी अभी चार पांच प्लेयर नहीं है, सीजेस रिटायर ही हो गए, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते हमें हो सकता है कि 16 की जब टीम जाएगी तो हो सकता है 10 प्लेयर चाहिए आपको ले
जी।
तो उस स्थिति के लिए अभी के परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं यही कहूंगा कि भारतीय टीम तैयार है और जो दो कांस्य पदक जीते हैं तो क्या पता ऐसी स्थिति बने कि अब हम दो के बाद तीसरा जब जीते लगातार तो वो गोल्ड हो।
जी बिल्कुल, अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें, हमने तीन मैच चाइना, जापान और मलेशिया के खिलाफ जीत लिए, तीनों टीमें एशियाई हॉकी में अच्छी टीमें मानी जाती हैं, लेकिन अब जो है मुकाबला वो पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया से होना है। आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम की जो वर्तमान हालत है उसमें वो टीम भारत के लिए कोई चुनौती पेश कर पाएगी, और दक्षिण कोरिया की टीम अगर कहें तो एशिया में दूसरे नंबर की टीम मानी जाती है?
बिल्कुल, देखिए मलेशिया की भी टीम उप विजेता है
जी,
बट उसकी स्थिति आप देखिए, देखिए खेल स्किल सबके पास है जब आप उस लेवल पे खेल रहे हैं, और ये भूलना नहीं होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी जो बेस्ट टीम होती है, जो चैंपियंस ट्रॉफी FIH चैंपियंस ट्रॉफी उसमें खेलती है, और एशिया में जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है तो ये यहां की बेस्ट 6 टीमें हैं। अब उनकी मौजूदा स्थिति क्या है वो तो हम देख रहे हैं प्रदर्शन से। पाकिस्तान ने जिस तरह से 2 मैच ड्रॉ कराए हैं, 1 मैच पाकिस्तान जीतने में सफल रहा है, जिस तरह का खेल रहा है मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम को 14 तारीख को वो मुकाबला है भारत पाकिस्तान, हमेशा से उसका इंतजार रहता है कि भारत पाकिस्तान किसी भी खेल में, तो मुझे नहीं लगता कि भारत को दिक्कत होगी, क्योंकि माइंडसेट वाली बात है, और जिस माइंडसेट में भारतीय टीम है, इतने प्लेयर नहीं गए या रिटायर हो गए बाहर बैठे हैं, तो जिस तरह से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि इन 2 मैचों में, हालांकि खास तौर पर 1 मैच में देखना चाहूंगा साउथ कोरिया में भी, हालांकि जो 3 मैच अभी तक खेले हैं 1 ही में जीत हासिल की है और 2 मैच ड्रॉ हो रहे हैं
जी।
तो मुझे नहीं लगता कि भारत को
कुछ खास चुनौती
मिलेगी, और जो इस टीम का जो राउंड रोबिन मैच है उसके बाद जो फॉर्मेट है कि टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी और उसके बाद फाइनल होगा, भारत 4 बार का विजेता है, मौजूदा चैंपियन है, मैं देख रहा हूं कि भारतीय टीम फिर से खिताब लेकर वहां से वापस आएगी।
हॉकी से एक और खबर, पुणे में 4थी सीनियर पुरुष अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में भारतीय खाद्य निगम FCI, सेना खेल नियंत्रण बोर्ड, भारतीय नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG और पंजाब नेशनल बैंक PNB ने आज क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। बात क्रिकेट की, दलित ट्रॉफी के दूसरे दौर के मुकाबले कल से शुरू होंगे, बांग्लादेश के साथ श्रृंखला के कारण भारत की राष्ट्रीय टीम में शामिल कुछ खिलाड़ी इस दौर में नहीं खेल पाएंगे, ऐसी स्थिति में रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों पर नजर रहेगी।
इस टूर्नामेंट के पहले दौर में कुछ भारतीय सितारे में खेलते दिखे थे, जिसमें से कुछ का बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के लिए चयन हो गया है। हालांकि रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर सहित कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनको टीम में जगह नहीं मिल सकी, ऐसे में दूसरे दौर के मुकाबले में इन जैसे खिलाड़ियों पर भी सबकी नजरें होंगी। सरफराज खान भारतीय टीम के अकेले सदस्य हैं जो इस घरेलू टूर्नामेंट के दूसरे दौर में दिखेंगे। शुभमन गिल के भारतीय टीम में जाने से मयंक अग्रवाल इंडिया ए के कप्तान होंगे। आखिरी टेस्ट मार्च 2022 में खेलने वाले मयंक को राष्ट्रीय टीम में चयन का दावा फिर बुलंद करने के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा चोट के कारण पहले दौर में नहीं खेल सके थे, उन्हें इंडिया ए टीम में रखा गया है। इंडिया बी टीम में कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन को मोर्चे से अगुवाई करनी होगी, जो पिछले सप्ताह बेंगलोर में पहले दौर में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे। सरफराज के छोटे भाई मुशीर खान ने पहले दौर में 181 रन बनाकर इंडिया बी को इंडिया ए पर जीत दिलाई थी। अब बड़े भाई की नजरें भी बड़ी पारी खेलने पर होंगी। इंडिया बी टीम में वॉशिंगटन सुंदर भी हैं, वहीं पहले टेस्ट में आकाश दीप को तेज गेंदबाज मुकेश कुमार पर तरजीह दी गई, जिसके बाद मुकेश भी अपनी उपयोगिता साबित करना चाहेंगे। इंडिया सी के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन और ऋतुराज गायकवाड़ भी रन बनाकर राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान खींचना चाहेंगे। इंडिया डी के कप्तान श्रेयस अय्यर टेस्ट टीम से बाहर किए जाने के बाद रन बनाकर अपनी उपयोगिता साबित करने की कोशिश करेंगे। इस तरह देवदत्त पडिकल और संजू सैमसन भी अपने प्रदर्शन से प्रभावित करने की फिराक में होंगे। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
शक्ति की जो ये रिपोर्ट सुनी संजीव हमने, इसमें ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये जो दलित ट्रॉफी का फॉर्मेट बदला है और जिस तरह से खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने के लिए, प्रदर्शन के लिए लालायित थे, उससे ये टूर्नामेंट भी बहुत ही जबरदस्त हो चला है। भले ही हमारी जो है ओरिजिनल टीम अभी बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैच खेलने की तैयारी कर रही हो।
देखिए, भारत को अभी इसके बाद न्यूजीलैंड से खेलना है, फिर ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जाना है, 5 टेस्ट मैच वहां खेलेंगे। तो अभी टेस्ट मैच में भी ऐसा नहीं है कि जो प्लेयर सिलेक्ट हो गए हैं, एक ही टेस्ट मैच के लिए बांग्लादेश के खिलाफ टीम का ऐलान किया गया है, दूसरे टेस्ट में हो सकता है कि टीम बदले, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में हो सकता है कुछ खिलाड़ी टेस्ट लिए जाएं, चोटिल हो जाएं, तो मौका बनता रहेगा। और कुछ भी कह लें, लेकिन जो खिलाड़ी खेलते हैं, इवन इफ जैसे रिंकू सिंह की बात करें, T20 में उन्होंने नाम कमाया, बट आप उनसे पूछेंगे पर्सनली, ऐसे भी आप पूछेंगे तो वो जरूर चाहते हैं, हर प्लेयर चाहता है क्रिकेटर कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले
जी।
और कोई भी इससे मतलब कोशिश करने से नहीं चूकेगा कि मैं अपना बेस्ट दूं और फिर जगह बनाऊं। पहले जो फॉर्मेट था कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोनल होता था, अब ABC टीम बन गई है D, तो अब नॉकआउट भी नहीं है। और तीसरा जो इसका दौर शुरू होगा वो 19 से 22 के बीच होगा, जबकि उसी समय बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई में टेस्ट मैच चल रहा होगा। और जो इंक्लूजन हुआ है, जैसे आप देखें आकाशदीप हैं, सरफराज हैं इसमें भारतीय टीम में, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि भारतीय 11 का हिस्सा नहीं होंगे, इस वजह से उन्हें इसमें भी खेलने को कहा जा रहा है ताकि वो प्रैक्टिस में रहें इस फॉर्मेट में
जी।
तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि जिस तरह से फॉर्मेट बदला है और पॉइंट्स टेबल में जैसे उसका बन रहा है और प्लेयर्स के बीच जो होड़ है, आगे आने वाले समय में हो सकता है और भी रोमांचक बने ये
जी। और ग्रेटर नोएडा में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल भी रद्द कर दिया गया। आज भारी बारिश के कारण मैदान के कई हिस्सों पर पानी भर गया। हम बात करें स्वतंत्र भारत के पहले क्रिकेट कप्तान लाला अमरनाथ की, तो उनका जन्मदिन है। उनका जन्म 11 सितंबर को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। उन्होंने भारत की तरफ से पहला टेस्ट शतक भी लगाया था। सुनते हैं उन पर ये रिपोर्ट।
जिमखाना ग्राउंड पर साल 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में ही शतक लगाकर लाला अमरनाथ ने क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी थी। वो भारत के लिए शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। इससे एक साल पहले ही भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। एक साधारण बैकग्राउंड से आए लाला अमरनाथ ने डोनाल्ड ब्रैडमैन को भी पहली बार हिट विकेट आउट किया था। उस दौर में लाला अमरनाथ ने 24 टेस्ट मैच खेले थे। वो पहले भारतीय कप्तान थे जिसने लगातार 10 टेस्ट मैचों तक टीम को लीड किया था। 15 टेस्ट मैचों तक उनकी कप्तानी चली, जिसमें भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की थी। 1952 में फिरोजशाह कोटला में ये मैच खेला गया था। इसी साल ईडन गार्डन्स में हुए टेस्ट मैच के बाद लाला अमरनाथ ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अमरनाथ उस समय भारत के सबसे अच्छे ऑलराउंडर थे, लेकिन उनका करियर दूसरे विश्व युद्ध की वजह से काफी प्रभावित हुआ। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन।
फुटबॉल के बाद दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित 63वें सुब्रतों का फुटबॉल के अंडर 17 बालक वर्ग का खिताब PG इंग्लिश स्कूल मणिपुर ने जीत लिया है। फाइनल में उसने मिंगगेन क्रिश्चियन हाई स्कूल मेघालय को रोमांचक मुकाबले में पराजित किया। इस टूर्नामेंट को लेकर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ग्रुप कैप्टन यशवंत सिंह पंघाल ने क्या कहा, ये सुनते हैं।
अंडर 17 बॉयज में 37 टीम्स आई, फाइनल्स में जो ईस्ट की दो टीम मेघालय और मणिपुर आई, और बहुत ही रोमांचक और अच्छा लेवल का मैच हुआ जो कि पेनल्टी शूट आउट में फाइनल हुआ, और आज जो है मणिपुर की टीम ने वो खिताब जीता। जो हमारा एम है सुब्रतों सोसाइटी का, टू प्रमोट फुटबॉल एट द ग्रास रूट लेवल, और उसका स्कूलों में जो है लेवल भी बढ़ाया जाए, तो उसका पता जब लगता है जब फाइनल्स में जो टीम है वो कैसी परफॉर्म करती है और उसमें से कितने लोग आगे सेलेक्ट होते हैं। तो आज का मुकाबला, अच्छा ग्राउंड, अच्छा मौसम और सब को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही रोमांचक मुकाबला था।
फुटबॉल की और खबर, असुनसियन में पैराग्वे ने विश्व कप क्वालिफायर फुटबॉल मैच में ब्राजील को 1-0 से हरा दिया। पैराग्वे की 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील पर 2008 के बाद यह पहली जीत है। उधर बोगोटा में मेजबान कोलंबिया ने दक्षिण अमरीका विश्व कप फुटबॉल क्वालिफायर में विश्व चैंपियन अर्जेंटीना को 2-1 से पराजित किया। घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। संजीव, स्टूडियो आने के लिए हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया।
नमस्कार
दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।